आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। स्मार्ट एनर्जी काउंसिल के प्रमुख का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के पास नवीनकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी महाशक्ति बनने के माध्यम से व्यापार और व्यवसाय का जीवन भर में एक बार का मिलने वाला अवसर आया है। सीईओ जॉन ग्राइम्स ने नेशनल प्रेस क्लब को बताया कि ऑस्ट्रेलिया को अपने प्राकृतिक संसाधनों की ताकत को देखते हुए अपनी रिन्यूएबल एनर्जी रणनीति को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास एक अद्भुत राष्ट्रीय लाभ है। अगर आप एक सौर पैनल को ऑस्ट्रेलिया में लगाते हैं और वही पैनल जर्मनी में लगाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वाला पैनल जर्मनी के मुकाबले 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। पैनल एक ही है लेकिन सूर्य की तीव्रता अधिक है। लागत समान है लेकिन आर्थिक लाभ 4 गुना है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया को अपने व्यापारिक साझेदार चीन से सीख लेनी चाहिए और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक टीम के रूप में काम करना चाहिए ताकि देश इस ऊर्जा उत्पादन और निर्यात के अवसर का लाभ उठा सके। वहीं तस्मानिया के प्रीमियर जेरेमी रॉकक्लिफ ने अगले सप्ताह होने वाले राज्य चुनाव से पहले दूरदराज इलाकों के निवासियों के सामने अपनी बात रखी है। प्रीमियर रॉकक्लिफ ने फ्लिंडर्स द्वीप का दौरा किया जो बैस सीट पे आता है और हालिया अनुमानों के अनुसार वहां लगभग 900 लोग रहते हैं। एक कड़े चुनावी मुकाबले में राज्य के लिबरल नेता इस छोटे समुदाय को हल्के में नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि सरकार को फ्लिंडर्स द्वीप समुदाय द्वारा तस्मानिया में दिए जा रहे योगदान का सम्मान करना चाहिए। वहीं एक तरफ जहां अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख क्षेत्रीय बैठक में अपने दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोगियों को ये भरोसा दिलाने का प्रयास करेगा कि वे एक विश्वसनीय साझेदार बना हुआ है। विदेश मंत्री पेनी वोंग मलेशिया के लिए रवाना हो गई हैं और वे कल यानी गुरुवार 10 जुलाई को आसियान सम्मेलन में मुख्य भाषण देंगी, जिसमें वे विशेष रूप से मुक्त और खुले व्यापार के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की विश्वसनीयता को रेखांकित करेंगी। दक्षिण पूर्व एशिया मामलों में एक विशेषज्ञ की चेतावनी रही है कि एक क्षेत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। ANU के एमेरिटस प्रोफेसर पीटर ड्राइसडेल का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को आसियान देशों के साथ मिलकर उस व्यापार युद्ध के आर्थिक प्रभाव को सीमित करने की दिशा में काम करना चाहिए जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के GDP का 11% से अधिक हिस्सा तक मिट सकता है। वहीं नॉर्दर्न टेरिटरी के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने स्वीकार किया है कि उनकी पुलिस फोर्स में नस्लवाद का सामना करना आवश्यक है, जबकि एक अबोरिजिनल किशोर की हत्या के आरोप से बरी हुए पूर्व अधिकारी ने इस घटना में नस्लीय पक्ष की भूमिका को नकारा है। अपने वकील के माध्यम से जारी एक बयान में जैकरी रॉल्फ ने कहा है कि वे 9 नवंबर 2019 को अपने आचरण से संबंधित कई निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर मारिन डॉल ने कहा कि वे जांच से आई 18 सिफारिशों को गंभीरता से लेंगे और ये प्रतिक्रिया स्थायी और सार्थक होनी चाहिए। कमिश्नर ने उन सांस्कृतिक सुधारों की ओर इशारा किया है जो वर्तमान में प्रगति पर हैं और जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से लियान लिटिल कर रही हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वी बोस्निया के जंगलों से होकर लगभग 7,000 लोगों ने 3 दिवसीय शांति मार्च की शुरुआत की है। ये मार्च 1995 के स्रेब्रेनिका नरसंहार के हजारों पीड़ितों की स्मृति में निकाली जा रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त एकमात्र जनसंहार माना गया है। बोस्नियाई सर्बों द्वारा स्रेब्रेनिका में संयुक्त राष्ट्र संरक्षित सुरक्षित क्षेत्र में बोस्नियाक समुदाय मुख्य रूप से मुस्लिम पुरुषों और लड़कों के 8,000 से अधिक लोगों की हत्या की 30वीं बरसी को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक गंभीर स्मृति कार्यक्रम के माध्यम से भी मनाया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया ने इस नरसंहार और बोस्नियाक नागरिकों को जबरन निकाले जाने की घटना को जनसंहार करार दिया है। हर साल निकलने वाली ये 100 किलोमीटर लंबी मार्च उसी रास्ते से जाती है जिससे होकर बोस्नियाक लोग 1992 से लेकर 1995 के अंतर जातीय युद्ध के अंतिम महीनों में बोस्नियाई सर्ब बलों से बचने की कोशिश में भागे थे। और अंत में खबरें भारत से। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पंजाब में एक बार फिर बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद किए हैं। भारत के खुफिया इनपुट्स के मुताबिक ये हथियार सरहद पार से खालिस्तानी नेता हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा की मदद से भारत भेजे गए हैं। पंजाब के गुरदासपुर में विस्फोटक और शस्त्र अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है और रिंदा के नेटवर्क की पहचान व गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। इससे पहले भी 27 जून को पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 संदिग्धों को अमृतसर में गिरफ्तार कर एक और बड़ी साजिश को विफल किया था। पुलिस ने 2 हथगोले और एक पिस्तौल भी बरामद की थी। DGP गौरव यादव ने कहा कि पुलिस राज्य में संगठित आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ 9 जुलाई 2025 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।